आज है 2 सितंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की एक दिन की देशव्यापी हड़ताल।
बड़ी सक्सेसफुल हड़ताल रही है। हमारी उम्मीद है कि इस दफा लास्ट ईयर से भी ज्यादा वर्करों ने इसमें शिरकत की है।
पाकिस्तान में हुए बम धमाके, कम से कम 12 लोगों की मौत। और मदर टेरेसा की 19वीं पुण्यतिथि पर याद करेंगे उन्हें आज की विवेचना में।
मैंने किसी सिस्टर से पूछा, ये मदर की साड़ी में इतनी डार्निंग क्यों है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा रूल है, हमारी केवल 3 साड़ियां हैं। एक हम पहनते हैं, एक हम रखते हैं धोने के लिए, और तीसरा हम रखते हैं स्पेशल ओकेजंस के लिए।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने आज देश भर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। 11 मजदूर संघों समेत कई संगठन इसमें शामिल हुए। हालांकि भारतीय मजदूर संघ और कई दूसरे संगठनों ने इसे खुद को अलग रखा। भारत के करोड़ों मजदूर इस हड़ताल में शामिल हुए। प्रमुख रूप से इसका असर बैंकों और कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन पर दिखा। हालांकि रेल पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ा। देश के मजदूर मजदूरी बढ़ाने और मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों के खिलाफ अपना रोष जताने के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर इलाके में आज कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दी गई। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए ये कर्फ्यू लगाई गई। इस वजह से आज भी यहाँ रोज़मर्रा के कामकाज ठप रहे। बुरहान वानी की मौत के बाद ये 56वां दिन है जब श्रीनगर में कर्फ्यू है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे श्रीनगर जिले और घाटी के कुछ दूसरे शहरों में सावधानी के तहत कर्फ्यू लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है उनमें अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, बारामूला और पाटन शामिल हैं। उत्तरी पाकिस्तान के मारदान शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 12 लोगों की जान गई है। हमला कोर्ट परिसर में हुआ। स्थानीय पुलिस प्रमुख एजाज अहमद खान ने बताया,
शाहिदी ने कि पुलिस वाले ने इसको रोका, इसने ग्रेनेड फेंका, आगे जैसे बड़ा एक अल्लाह अकबर की एक आवाज़ आ गई और पुलिस वालों की फायरिंग से ये बंदा जो है ना ये ब्लास्ट हो गया। बार प्रेजिडेंट साहब ने उसी वक्त जब पहला धमाका हो गया तो ये कह रहे कि मैंने उसको बता दिया कि यार बैठ जाए, लेकिन हमारे जो पुलिस वाले थे वो शहीद हो गई। इसमें 3 या 4 जो है वकला वो शहीद हो गए। टोटल जो है वो 10 या 11 बंदे शहीद हो गए। 27
इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान के एक गुट जमात अल अहरार ने ली है। सीरिया में दमिश्क शहर के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले सैकड़ों लोगों को वाले इलाके से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विद्रोही ताकतों और सरकार के बीच इस मुद्दे पर एक समझौता हुआ है। मुआदामिये शहर के निवासी अपना सामान लेकर बसों में बैठे और वहां से बाहर गए। समझौते के मुताबिक सरकार का इन इलाकों पर नियंत्रण होगा जबकि विद्रोहियों को माफ़ी दी जाएगी। ये शहर पिछले 3 साल से विद्रोहियों के कब्जे में था। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक दल आज दक्षिणी सूडान जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर देश में 4,000 अतिरिक्त शांति रक्षकों को भेजने का फैसला किया है। दक्षिणी सूडान की सरकार ने इस कदम को नव उपनिवेशवाद बताते हुए कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग नहीं करेगी। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन वापस लेने का फैसला किया है। बैटरी में गड़बड़ी के कारण आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अमरीका और दक्षिण कोरिया में फ़ोन चार्ज करने के दौरान कई फ़ोन में धमाके हुए। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाई गई श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को संगठनों ने सफल बताया है। इस हड़ताल के जरिए ये संगठन न्यूनतम मजदूरी, श्रम कानून लागू करने और निजीकरण रोकने की मांग कर रहे थे। इन संगठनों ने 12 मांग सरकार के सामने रखी थी। इधर सरकार का कहना था कि इन मांगों पर गौर किया जा रहा है। देश भर के कई जगहों पर बैंक, सरकारी दफ्तर और कारखाने बंद रहे और सार्वजनिक परिवहन पर भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। हालांकि सरकार ने स्थिति सामान्य होने का दावा किया है। पूरे ब्यौरे के साथ नितिन श्रीवास्तव।
साल 2009 के बाद से शुक्रवार की हड़ताल चौथी सबसे बड़ी बताई गई है। करोड़ों कामगार इसी के चलते हड़ताल पर रहे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों के अलावा करीब 11 ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया। हड़ताली संगठनों ने कहा कि उनकी हड़ताल सरकार की मजदूर विरोधी और इंसान विरोधी नीतियों के विरोध में है। उधर सरकार की हड़ताल को टलवा देने की कथित कोशिशों के बावजूद देश भर में बैंकिंग, बीमा, कोयला क्षेत्र और टेलीकॉम क्षेत्र प्रभावित दिखे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता जीएल धर के मुताबिक हड़ताल सफल रही,
बड़ी सक्सेसफुल हड़ताल रही है। हमारी उम्मीद है कि इस दफा लास्ट ईयर से भी ज्यादा वर्करों ने इसमें शिरकत की है। हमारी उम्मीद है कि इस दफा इससे 15 करोड़ से भी ज्यादा शिरकत होगी।
हड़ताल चाहे बड़ी हो या छोटी, सामान्य जनजीवन पर असर तो पड़ना ही था। सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी और वे इसमें शामिल भी हुई। हालांकि उनके मुताबिक आपात सेवाएं प्रभावित नहीं रहीं। बहरहाल दिल्ली में वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही नर्सों को पुलिस ने कथित तौर से जबरन बस में बिठाकर हटाया। उधर बिहार में परिवहन क्षेत्र पर भी इसका असर दिखा और ऑटो चालकों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनमें से एक विजय नाथ ने बताया,
और ये हड़ताल जो परिवहन सुरक्षा में जो विधेयक जो बना है वो विधेयक गरीब विरोधी है और इसमें जितने भी चालक हैं वो सक्षम नहीं हो पाएंगे इस विधेयक को फॉलो करने में।
लेकिन विजय जैसों की हड़ताल से होम्योपैथिक की पढ़ाई करने वाले किशन सिंह जैसों की मुसीबतें भी बढ़ी।
ऑटो वाले मिल ही नहीं रहे, पता नहीं चल रहा किस चीज़ का हड़ताल है। यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑटो वाले भी कुछ एक्स्ट्रा ही मांग रहे हैं, जहाँ 5 रुपया लग रहा है वहाँ 10 रुपया मांग रहे हैं। हम पूछे भी, भैया क्या बात है इतना रुपया ले रहे हो, कोई जवाब ही नहीं दिए।
और जाहिर है जिन्हें दिक्कत होगी उन्हें हड़ताल से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई देगी। महाराष्ट्र में ये शख्स अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके इसी हड़ताल के चलते।
वो इधर सब बंद किया ना, सब बदमे के लिए जाने के लिए आने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। और सो गांव जाने वाला है इसके लिए बहुत वो प्रॉब्लम का, बस नहीं है और यहाँ पर करने वाला के यहाँ पर भी नहीं।
ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को खत्म करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को ही कहा था कि सरकार अपने कर्मचारियों का पिछले 2 साल का बोनस जारी करेगी। इसके साथ अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में इजाफे की बात भी कही गई थी। लेकिन हड़ताल के दिन सरकार के तेवर कड़े दिखे। बहरहाल असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रेलवे यातायात को रोके जाने की खबरें आईं, तो दक्षिण भारत में बेंगलुरु में पहले से ही स्कूल और कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए थे। पश्चिम बंगाल में तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुईं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस हड़ताल से अर्थव्यवस्था को लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता जीएल धर इस बात का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर दूसरी ट्रेड यूनियनों ने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया।
फैसला है वो, उन्होंने फैसला करना, हमने थोड़ी फैसला करना, हमने तो उनको बाहर निकाला नहीं, वो खुद ही बाहर चले गए, वो क्या करेंगे भविष्य में वो उनका फैसला है।
बहरहाल हड़ताल होने का सबसे बड़ा कारण न्यूनतम मजदूरी है। श्रमिक संगठनों की मांग थी कि इसे कम से कम 18,000 प्रति माह किया जाए। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के लोगों समेत सभी श्रमिकों के लिए पेंशन कम से कम 3,000 रुपया महीना किया जाए। लेकिन इन दिनों रिवाज से थोड़ा दूर जा चुकी हड़तालें एक बार फिर से आम आदमी और सरकार के जीवन में दस्तक जरूर दे रही हैं। अगर संख्या बढ़ेगी तो नतीजों का असर भी दोनों पर पड़ेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
मजदूर संगठनों का दावा, बढ़ती महंगाई के आगे कुछ भी नहीं है न्यूनतम मजदूरी में 40% का इजाफा। सरकार का दावा, मजदूरों की जायज मांगों पर हो रहा है विचार। निजीकरण और सुधारों का लागू करना वक्त की मजबूरी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस वक्त हड़ताल का नुकसान झेलने की स्थिति में है? इंडिया बोल में इस बार इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 सितंबर शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
एक दस्तावेज में 3 बार तलाक या ट्रिपल तलाक को सही बताते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 3 बार तलाक की वैधता पर फैसला नहीं ले सकता है। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास से पूछा कि 3 बार तलाक के मुद्दे पर बोर्ड क्यों अड़ा हुआ है।
देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं अड़ा हुआ है। अगर आप ये कहें कि आज आप 16वीं 21वीं सदी में रहते हैं इसलिए अब मजहब की कोई जरूरत बाकी नहीं रही है।
कौन ये कह रहा है? बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए जो कहती हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है।
असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कानून में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके एप्लीकेशन में गड़बड़ है। देखिए, मैंने आपसे बताया कि शरीयत ये चाहती है कि जो शादी हो वो शादी बाकी रहे, खत्म नहीं हो। लेकिन अगर कोई शख्स तलाक देने पर ही तुला हुआ है तो शरीयत ये कहती है कि साहब एक बार में एक तलाक दीजिए। लेकिन अगर कोई आदमी तीनों ऑप्शन अवेल कर लेता है तो हनफी मसलक जो है वो ये कहता है, बल्कि चारों जो मसालिक है मुसलमानों में स्कूल ऑफ थॉट, वो ये कहते हैं कि तलाक वाकई हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि असल इशू जो है वो मुसलमानों को एजुकेट करने का है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस काम में लगा।
मतलब एजुकेशन कब होगी? एजुकेशन तो एक ऑन गोइंग प्रक्रिया है ना सर, उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि अगले 4 साल में एजुकेशन हो जाएगी 6 साल में।
देखिए, सवाल ये है कि अगर कोई आदमी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो क्या होता है उसके सिलसिले में? दो रास्ते होते हैं कानून, अगर किसी आदमी ने गलत काम किया है तो गलत काम तो वाकई हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जहां तक इस्लामी कंट्री से ताल्लुक है, वहां पर एक आदमी अगर एक ही मजलिस में 3 बार तलाक दे देता है तो उस पर कोड़े लगाए जाते हैं या उसको सजा मिलती है। तो अगर सजा का कोई प्रोविजन करने का इरादा हो तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये कि आप ये कहें कि भाई एक आदमी ने तलाक दे दी, आप कहिए वो तलाक वैलिड नहीं है।
कासिम रसूल इलियास साहब, लोग SMS पर तलाक दे रहे हैं, लोग फोन पर तलाक दे रहे हैं, आप क्या अपने समुदाय में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, जो कह रही हैं कि कैसे उनको उनके शौहर ने घर से बाहर निकाल दिया, तलाक दे दिया, किस तरह से उनके साथ ज्यादती हुई, आप उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है? आप बस अपनी जिद पे अड़े हुए हैं
जनाब। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम तो ये कह रहे हैं कि असल इशू ये है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी चीज को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो ये मसला होगा। मैं जैसे भी ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जाहिर है कि हमारी कम्युनिटी का इशू है तो हमको रिजोल्व करना चाहिए। इसको रिजोल्व करने के जितने तरीके हो सकते हैं हम उसके उसमें लगे हुए हैं। हमने
कैसे रिजोल्व कर रहे हैं आप?
देखिए, हमारे यहाँ इस्लाह माशरा के नाम से, यानी समाज सुधार के नाम से एक पूरी कंपेन चलाई जा रही है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि शरीयत क्या चाहती है, उसका मंशा क्या है। भाई, शादी अगर हुई है तो शादी को रिटेन करना चाहिए, शादी खत्म नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी आदमी की जिंदगी में अब मतलब कि अब कोई बाकी नहीं रह गया, साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस सूरत में एक तलाक देकर मामला खत्म करना चाहिए। एक तलाक देने के बाद ये बाकी रहता है ऑप्शन कि वो दोबारा आप उसके साथ में जिंदगी गुजार सकते हैं, आप चाहें तो रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 बार तलाक दे दी तो उसके बाद भी दूसरी बार शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 ही बार तलाक दे दी है तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत का जो तरीका है अगर उस पर अमल किया जाए तो इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होता है। असल प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि शरीयत पे अमल नहीं हो रहा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास से बात कर रहे थे विनीत खरे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक कॉलोनी पर चरमपंथियों के हमले के कुछ घंटे बाद ही मर्दान की जिला अदालत के बाहर 2 बम धमाके हुए। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए स्थानीय पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई से बात की।
ये मर्दान का शहर है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे का दूसरा बड़ा शहर है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, जिसको कचहरी भी कहते हैं, वहाँ पे ये खुदकुश हमला हुआ है और हमलावर ने अपने आप को उड़ा दिया। वहाँ पे काफ़ी लोग थे, वहाँ पे वकील भी थे और वहाँ पे कोर्ट्स हैं, जजेस भी हैं और आम लोग भी आए थे अपने केसेस के लिए। तो अभी इतला ये है कि 13 लोग इसमें मारे गए हैं और 60 जख्मी हैं, और ये जख्मी जो हैं ये ज़ाहिर है काफ़ी सीरियस हैं, तो इनमें से कुछ लोग मरते जा रहे हैं, तो ये तादाद में इजाफा हुआ है। और ये आज दूसरा हमला था यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। सुबह भी एक हमला हुआ था पेशावर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वर्सक, एक जगह है अफगानिस्तान की बॉर्डर के करीब, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक कॉलोनी है, तो वहाँ पे हमला हुआ। लेकिन वहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं वो कम हुई हैं, वहाँ पे 2-3 लोग जो हैं वो मारे गए, अलावा 4 जो हमला करने वाले थे वो सारे मारे गए। वहाँ पे बरवक्त कार्रवाई की पुलिस ने और फोर्सेस ने, लेकिन मर्दान में चूंकि काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे, तो वहाँ पे हलाकतें ज्यादा हैं।
जी वही, ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी तालिबान के एक धड़े ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कौन सा है ये धड़ा?
ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये काफी बिखर गई है। इसमें अभी कुछ ग्रुप अलहदा हुए, स्प्लिंटर ग्रुप बन गए, तो उनमें से एक जमातुल अहरार है जो आजकल जो भी हमले होते हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। इससे पहले क्वेटा में जो एक बड़ा हमला हुआ था अस्पताल में, हॉस्पिटल में, उसमें भी तकरीबन 75 लोग मारे गए थे। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि ये तंजीम जो है जमातुल अहरार, तो इन्होंने ये हमला किया है। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि एक से ज्यादा ग्रुप जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ये हमला उन्होंने किया है।
ये थे पेशावर से स्थानीय पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई। और अब समय है विवेचना का। पोप फ्रांसिस परसों यानी 4 सितंबर को सेंट पीटर स्क्वायर में मदर टेरेसा को संत घोषित करेंगे। मैसिडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा ने भारत में अपने जीवन के 68 साल गरीब लोगों की सेवा में अर्पित कर दिए। दुनिया के असहाय और गरीबों की उनकी सेवा के लिए उन्हें 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सम्मान लेकर भारत लौटी थी तो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा था, अभी तक आप भारत की माँ थीं, अब आप पूरी दुनिया की माँ बन गई हैं। उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट इन द नेम ऑफ द हंग्री ऑफ द नेकेड ऑफ द होमलेस।
मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे ये पुरस्कार पाकर बहुत खुशी हो रही है। दुनिया भर के भूखे, नंगे, बेघर, अपंग, नेत्रहीन और जो भी लोग जो अपने आप को अवांछित समझते हैं, जिनसे कोई नहीं प्यार करता, जो समाज से निकले हुए लोग हैं, जिन्हें हर कोई ठुकराना चाहता है, उनके नाम पर मैं ये पुरस्कार स्वीकार करती हूँ।
मदर टेरेसा के शब्द, बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद उनके सम्मान में दिए गए भोज को रद्द करने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस तरह से बचाए गए धन को कोलकाता के गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने गरीबों के शौचालय अपने हाथ से साफ किए और अपनी नीली किनारी वाली साड़ी को अपने हाथ से धोया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने मदर टेरेसा की जीवनी लिखी है। उनकी मदर टेरेसा से पहली मुलाकात 1975 में हुई थी। उस समय वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद के सचिव हुआ करते थे और उन्होंने उपराज्यपाल को अपनी एक संस्था का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था।
यहाँ मैंने क्या देखा कि मदर टेरेसा की साड़ी पीछे से, साड़ी तो बड़ी साफ थी, पर मैंने देखा कि कई जगह जहाँ फटी हुई थी उन्होंने नीटली डान कर दिया। तो मैंने किसी सिस्टर से पूछा कि ये मदर की साड़ी में इतनी डार्निंग क्यों है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा रूल है कि हमारी केवल 3 साड़ियां हैं, एक हम पहनते हैं, एक हम रखते हैं धोने के लिए और तीसरा हम रखते हैं स्पेशल ओकेजन्स के लिए। तो मदर की भी 3 ही साड़ियां हैं। सो इट वाज अ पॉवर्टी आउट ऑफ चॉइस।
मदर टेरेसा को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि उनके हैंडशेक में इतना आकर्षण हुआ करता था कि लोग उनसे जुड़े बिना नहीं रह पाते थे। सुनीता कुमार, उद्योगपति और भारत के पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार की पत्नी हैं और कोलकाता में रहती हैं। उनका और मदर टेरेसा का 35 साल का साथ रहा है और उन्होंने मदर टेरेसा की मौत तक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के प्रवक्ता के तौर पर काम किया है। मैंने सुनीता कुमार से पूछा कि आप मदर टेरेसा के संपर्क में सबसे पहले कैसे आई?
पहला बच्चा हो गया जब शादी के बाद, तो मैंने सोचा कि मैं अब जरूर कुछ और भी करूंगी। तो मैंने एक ग्रुप ऑफ लेडीज को ज्वाइन किया और वहाँ पे मदर को मैं मिली, क्योंकि मदर हमको पेपर पैकेज सिखा रही थी कैसे बनाने के लिए, लेपर्स के लिए, उनकी दवाइयों के लिए। मेरी पहली मुलाकात वो मीटिंग में ही हुई थी। फिर जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया उनसे, तो बस वो हैंडशेक से ही कुछ हो गया।
कुछ खास उनके हैंडशेक में कुछ अलगपन था?
बहुत, आई मीन इट वॉज वेरी स्ट्रांग। एक्चुअली काफी लोगों से ऐसा फीलिंग होती थी। मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों ने जब उनको पहली दफा मिले तो कुछ हो जाता था।
मदर टेरेसा ने 1947 में ही भारत की नागरिकता ले ली थी। वो फर्राटे की बांग्ला बोलती थी। मैंने सुनीता कुमार से पूछा कि उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, कितनी सुबह उठती थी और कितनी व्यस्त रहती थी।
मदर को 4 या 5 घंटे की नींद से ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं कहाँ से उनको एनर्जी आती थी, पर रात को अगर मैं 12 बजे भी फोन करूँ उनको तो खुद ही उठाती थी। और दिन भर भी जितना देर वो घर में थी, इतनी सिंपल तरीके से रहती थी। मतलब बिल्कुल कोई ना सेक्रेटरी ना कोई असिस्टेंट उनके काम के लिए।
उनका दिन बहुत सुबह शुरू होता था?
हाँ, उनका शुरू होता था, सोचिए 5:30 बजे तो प्रेयर में लग जाती थी। फिर वो चलता था उनका 7:30 तक। उसके बाद अपना जो भी काम शुरू होता था, ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रेकफास्ट के माफिक कुछ खा लिया और फिर उसके बाद तो वो निकल जाती थी।
नवीन चावला बताते हैं कि इतना गंभीर काम करने और दुखी परेशान लोगों के इर्द गिर्द रहने के बावजूद सेंस ऑफ ह्यूमर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा।
सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बकायदा था। वो हर एक सिचुएशन को लाइटली ले लेती थी. आई मीन सिचुएशन तो सारे सीरियस थे, लुकिंग आफ्टर द अबैंडन्ड एंड द डाइंग, बट जहाँ जहाँ शी वुड ब्रिंग अ लाइट टच. जब वो सिस्टर्स को रिक्रूट करती थी तो एक क्वालिफिकेशन ये भी था कि दे शुड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी उनका एक BA MA था क्वालिफिकेशन में. और मदर तो हमेशा जो उसका करती थी, हंसती ऐसी थी कि जैसे अपने दोनों हाथ अपने हिप्स पे लग के ना, जब कोई चीज़ बहुत फनी होती थी तो ऐसे ज़ोर से हंसती थी कि शी वुड बेंड ओवर. तो मैंने कहा, मदर यू इवन व्हेन यू डू सच सीरियस वर्क यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, ट्राइंग टू लाफ, ट्राइंग टू क्रैक अ जोक. शी सेड यस, बिकॉज आई कांट गो टू द पुअर विद लॉन्ग फेसेस, आई हैव टू गो विद जॉय.
ये तो रही उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात, लेकिन क्या कभी उन्हें गुस्सा भी आता था?
बिल्कुल नहीं. ये अमेजिंग बात है कि वो फर्म होती थी, पर कभी चिल्लाई नहीं, कभी किसी को डांटा नहीं उस तरीके से जैसे हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं, कि कोई रेज्ड वॉइस कभी सुनाई नहीं दी. मैंने उनके साथ कम से कम 32 साल बिताए.
लेकिन भारत के मशहूर फोटोग्राफर रघु राय को एक मौका याद है जब मदर टेरेसा नाराज हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था.
माँ बहुत प्रेम भरी थी, बहुत कम्पैशनेट थी, बहुत लविंग थी, और इतनी टफ थी कि धुआं निकाल देती थी. पहली बार ही जब हम माँ के ऑफिस में बैठे थे डेजमंड डॉयग और मैं, तो डेजमंड बात कर रहा था कि हम इस तरह से रघु राय आपको कुछ दिन फोटोग्राफ करेगा, तो इतने में मैंने देखा एक दरवाजे पे हाफ कर्टन लगा हुआ है, वो कर्टन उड़ रहा है थोड़ा, और उसमें से दो सिस्टर्स फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी बाइबल हाथ में पकड़े प्रेयर कर रही थी. तो मैं सडनली मैंने सोचा नीचे बैठूंगा तो अच्छा एंगल मिल जाएगा, तो मैं कुर्सी छोड़ के बगैर माँ से पूछे मैं नीचे बैठ गया और क्लिक कर दिया. तो मदर ने देखा दिस गाय इज मिसिंग, कहती व्हाट द हेल Earth, are you doing here? She was very angry. कि बगैर पूछे बगैर बात की और तस्वीरें खींची. तो मैंने कहा मदर लुक एट दोज टू सिस्टर्स, दे लुक लाइक एंजल्स प्रेयर करती हुई. तो मदर कहती ऑल राइट. तो मदर का प्यार जो था कि अगर आपने अपनी ईमानदारी से कमिटमेंट से कुछ किया है तो माँ विल ऑलवेज बी विद यू.
मदर टेरेसा का मानना था कि मनुष्य को पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं. नवीन चावला एक हृदय विदारक किस्सा सुनाते हैं.
एक बार मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द सैडेस्ट केस यू कैन रिमेंबर, सो मेनी. आई सेड आई नो मदर, यू हैव लिफ्टेड सो मेनी पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, टेल मी वन केस, एनीवन दैट यू कैन रिमेंबर. शी सेड एक दिन मैं और मेरे साथ एक कंपेनियन सिस्टर थी, हम कलकत्ते में ही सड़क पे जा रहे थे, तो एक ढलाव था बाया और ढलाव में से एक आवाज आ रही, तो हम पीछे गए. वहाँ देयर वाज अ लेडी हु वाज डाइंग, शी वाज लाइंग ऑन टॉप ऑफ द रबिश हीप, चूहे घूम रहे थे, कॉकरोचेस वर देयर. They brought them and Mother Teresa took her to the home for the dying because she was dying now. And she cleaned her, changed her sari, washed her, disinfected her. Phir Mother ne pucha ki who did this to you? So she said, my son brought me here. So Mother ne kaha usko forgive kar do. Kyunki ye palon ki baat hai. आपकी आत्मा अब अपने भगवान के साथ मिलेगी. तो यू से अ प्रेयर टू योर गॉड, आई विल से अ प्रेयर टू माय गॉड एंड गो टू योर गॉड विद अ लाइट हार्ट. शी सेड नहीं मदर, मैं फॉरगिव नहीं कर सकता, मैंने इतना कुछ किया, मैं कैसे माफ करूं? पाला पोसा, इतने त्याग देखे, उसको पढ़ाया, और अंत में जब मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी, वो अपने हाथों से उसने मुझे यहाँ आके छोड़ा है. तो दो चार मिनट कोई बात नहीं हुई, उसके बाद शी ओपन्ड हर आइज, शी स्माइल्ड एंड शी सेड मैंने उसको माफ कर दिया. शी सेड इट इन बंगाली, और मदर टेरेसा तो बंगाली बोलती थी. तो विद दैट शी डाइड. बट जब मदर टेरेसा मुझे ये रिकाउंट कर रही थी किस्सा, तो उदासी तो थी, पर उसके अलावा मुझे ऐसे लग रहा था कि देयर वाज थोड़ा सा ये भी था कि हाउ कुड समबडी डू समथिंग लाइक दिस.
कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मदर टेरेसा को चमत्कार करते हुए देखा था. नवीन चावला चमत्कारों में यकीन नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी एक बार मदर के हाथों चमत्कार होते देखा था.
एक दिन वो रोम से आई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और वो जैसे उन्होंने लैंड किया मुझे इतला कर दिया था कि आप एयरपोर्ट अवश्य आ जाइए. मैं चला गया, प्लेन भी 20-25 मिनट लेट था. जैसे वो उन्होंने कहा कि मैंने कलकत्ते की कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, उस जमाने में एक ही फ्लाइट होती थी शाम को. मैंने कहा मदर वो तो प्लेन बोर्ड हो रहा है कलकत्ते के लिए, आपकी ये फ्लाइट लेट थी, आज रात को आप यहाँ रुक जाइए अपने आश्रम में, कल मॉर्निंग में 6 बजे की फ्लाइट है आप. शी सेज नहीं, मैं 6 बजे तक इंतजार नहीं कर सकती, मैं एक दवाई लाई हूँ, और ये दवाई ये बच्चे को आज रात को कलकत्ते में मिल जाए तो वो हो सकता है बच्चा, वी विल बी एबल टू सेव हिज लाइफ. तो मुझे जरूर जाना है, मैं तो पसीने पसीने हो गया, अब एयरपोर्ट में तो कौन क्या कंट्रोल कर सकता है. पर बहुत लोग आए, कोई उनके ब्लेसिंग्स देने आया, कोई ऑटोग्राफ लेने आया, तो सबको वो यही कहें कि एक बच्चा, वो उसकी लाइफ ऐसी है, मैंने वो मेडिसिन पहुंचानी है, किसी तरीके से आप मेरी हेल्प करिए। ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल टावर वालों को मिल गई थी और वहाँ से पायलट को मिल गई। तो आपको आश्चर्य होगा सुन के कि पायलट जो कलकत्ते का आदमी था, उन्होंने प्लेन जैसे टैक्सी कर रहा था ना, परमिशन ले ली और रोक दिया प्लेन, और मुझे बतलाया गया कि आप गाड़ी में बैठ के टामैक पे ले जाइए मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा के साथ कभी वो सूटकेस नहीं होते थे, वो गत्ते के डब्बे 6 या 7 थे उस टाइम, एक में तो उनके कपड़े थे, पर्सनल बिलोंगिंग, वो भी सूटकेस में नहीं, गत्ते के डब्बे में, और बाकी जो 5-6 डब्बे थे वो उनमें दवाइयाँ थी। तो सब चीज़ ला दी गाड़ी में, ले गए, एक सीढ़ी कहीं से आ गई, मदर टेरेसा प्लेन में चढ़े। अगले दिन मैंने कलकत्ते फ़ोन किया कि मदर वो आप पहुंच गए हैं, तो बच्चे का क्या हाल? She said, it's a first class miracle. बच्चा's life saved.
पूरी दुनिया के गरीबों के भोजन का ख्याल रखने वाली मदर टेरेसा खुद क्या खाती थी?
खाना तो उनका बिल्कुल सिंपल, खिचड़ी दाल ऐसे, और कभी कभी मच्छी, कलकत्ते की तो स्टेपल फूड है ना, तो वो मेरा ख्याल 10 दिन में या हफ्ते में शायद ऐसे खाती थी, पर बहुत सिंपल। और एक चीज मुझे मालूम है कि उनका बहुत शौक था चॉकलेट्स पे। वो जब गुजरी भी, तो जब मैं उनके कमरे में गई तो उनकी टेबल ड्रॉर खोला तो एक स्लैब कैडबरी का पड़ा था।
लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो अपने आश्रम से बाहर लोगों का दिया हुआ एक गिलास पानी भी स्वीकार नहीं करती थी, और उसके पीछे एक कारण हुआ करता था।
बहुत सिंपल खाती थी, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, मदर टेरेसा इस घर में कई बार आई हैं, एक गिलास पानी तक नहीं पिया, और ना उन्होंने ना उनके सिस्टर्स ने। तो शुरू शुरू में जब वो राजनिवास में हम मिले और मैंने कहा मदर विल यू हैव अ कप ऑफ टी, नो हम ना अमीर से ले सकते हैं ना गरीब से ले सकते हैं। जब हम गरीबों के घर जाते हैं, उन बेचारों को दिक्कत होती है एक प्याला चाय भी या कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाने में, तो अब हमारा ये रूल है शुरू से कि हम कहीं से एक बूंद पानी भी नहीं पीते, अपने आश्रम में ही लेते हैं।
चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन हो, या सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, या जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल, या फिर यासिर अराफात, सबका मदर टेरेसा के लिए विशेष अनुराग था। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो मदर टेरेसा जोर देकर उनसे मिलने गईं। किसी ने कहा भी कि अब इंदिरा गांधी से मिलने का क्या मतलब है, मदर टेरेसा का जवाब था, वो मेरी दोस्त हैं। और तो और, ज्योति बसु और मदर टेरेसा वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के मुरीद थे।
एक बार मैंने ज्योति बसु साहब से पूछा कि यू गिव हर सो मच सपोर्ट, आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो एथियस्ट हैं, व्हाट कैन यू हैव इन कॉमन विद मदर टेरेसा फॉर हूम गॉड इज एवरीथिंग। हंसने लगे। ही सेड वी बोथ शेयर अ लव फॉर द पुअर। कंप्लीट सपोर्ट ज्योति बसु साहब ने उनको दी। मदर टेरेसा यूज्ड टू टेल मी आई कैन वॉक इनटू हिज रूम एट एनी टाइम एंड ही विल से ही विल गिव हर व्हाटएवर शी वांट्स। जब वो बीमार होते थे, मदर टेरेसा उनके घर जाती थी, although he was an atheist and didn't believe in prayer, she would say a prayer. और जब वो हॉस्पिटल में कलकत्ते में हॉस्पिटलाइज होती थी, बासु साहब कलकत्ते में होते थे तो रोज जाया करते थे, ICU में नहीं जाते थे, हाजिरी अपनी लगा के चले आते। क्या रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन गुडनेस एंड पॉवर्टी।
फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप मदर टेरेसा पर आज की विवेचना दोबारा कल सुबह 8 बजे विश्व भारती में सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने आज देश भर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। 11 मजदूर संघों समेत कई संगठन इसमें शामिल हुए, हालांकि भारतीय मजदूर संघ और दूसरे संगठनों ने इसे खुद को अलग रखा। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर के कई इलाकों में आज कर्फ्यू लगा दी गई। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए ये कर्फ्यू लगाई गई है। उत्तरी पाकिस्तान के मारदान शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 12 लोगों की जान गई है। हमला कोर्ट परिसर में हुआ। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान के गुट जमात अल अहरार ने ली है। सीरिया में दमिश्क शहर के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक दल आज दक्षिणी सूडान जा रहा है और सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 स्मार्टफोन वापस लेने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे निखिल रंजन। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।